प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करोठा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साही गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मणि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोत्तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशंधनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समान निरतलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गण नायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊ गण नायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊ आदंत करू सेवा। परम शक्ति संगीतम सिद्धिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88 उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88 उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। सत्साही कर जोरू विनती करूं दरू चरण कर शीशे गुरु जी राम देवानंद जी महाराज जी ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। मुकुट तेरे दरबार का, रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जाखें चो जाऊं मैं तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो रखो तो ही रहूं, जो देवो सुखां। जय इब कै सतगुरु मिले, जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आखों रो चरणों ऊपर शीश धरूं, हूं कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुसलात, आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारद तिनके हृदय न समाऊं, अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हारे, भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन उतारे, अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूं, बहुर पिता को लाज, मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक बरे विकारे, तुम दाता दुख बंजना, मेरी करो संभव। परमपिता परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ रचनहार कुल मालिक कबीर साहिब जी की असीम कृपा से इस कलयुग के अंदर ये सत्संग होता है। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परमेश्वर कबीर जी वो पूर्ण ब्रह्म है, ये वही परमात्मा है जो बनारस में, काशी में, भारतवर्ष में काशी शहर के अंदर एक कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण करके ये परमात्मा विराजमान हुए थे। ये परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। सतयुग के अंदर इनका नाम सत सुकृत होता है, त्रेता में ये मुनिंदर नाम से प्रसिद्ध होते हैं, और द्वापर के अंदर करुणामय नाम से, और कलयुग में ये अपने वास्तविक नाम से, कबीर देव नाम से, कबीर साहब नाम से प्रकट होते हैं। परमात्मा का यहां आगमन, अपने सतलोक से चलकर यहां आगमन का एक विशेष उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य ये होता है कि काल भगवान ने हम जिसके राज्य में रह रहे हैं, जिसके लोक में रह रहे हैं, यहां का मालिक है काल भगवान, जिसे ज्योति निरंजन भी बोलते हैं, जिसको ब्रह्म भी कहते हैं, और चारों वेदों में महिमा तो पूर्ण परमात्मा की वर्णित है, लेकिन भक्ति की विधि केवल ब्रह्म तक की वर्णित है। ब्रह्म तक की साधना करके प्राणी कहां जाता है, ब्रह्मलोक में जाता है। गीताजी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ये गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, काल बोल रहा है। ये कहता है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरा एक ओम मंत्र है मुझ ब्रह्म का, मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके जो सुमन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वो इस ओम नाम के जाप से मिलने वाली जो गति है उस परम गति को प्राप्त होता है। ब्रह्म की साधना से कहां जाते हैं, ब्रह्म लोक में जाते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि अर्जुन ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावर्ती में हैं। पुनरावर्ती का अर्थ है कि वहां गए हुए भी अपने पुण्य अक्षीण होने पर, ब्रह्म लोक में गए हुए साधक भी पुनों के अक्षीण होने पर वापस कर्म आधार से स्वर्ग और इस मृतलोक में आते हैं। नरक में, मृतलोक में जब इसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो ऐसे ये चक्कर लगाते हैं, अर्थात इसको पुनरावर्ती बोलते हैं, यानी जन्म मृत्यु बनी रहती है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तुझे तत्व ज्ञान प्राप्त हो जा, उस तत्व ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात जिनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है, जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है और वो सतलोक में चले जाते हैं, सनातन परमधाम में पहुंच जाते हैं। वहां ऐसी ही सृष्टि है, वहां किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, वो 5 तत्वों से बना हुआ वहां बॉडी नहीं है, वहां केवल नूर से बनी हुई बॉडी है, शरीर है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी रोग टेंशन आदि नहीं होते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में स्पष्ट किया है कि उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है, अर्थात जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सृष्टि रचना की है, और मैं उसी की शरण हूं। गीता ज्ञान दाता कहता मैं उसकी शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए, उसी परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि हे अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है और है जो पूर्ण मोक्षदायक है और जिसकी कृपा से सनातन परम धाम यानी सत्यलोक प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति और सनातन परम धाम यानी शाश्वतम स्थानम का अर्थ होता है सनातन परम धाम। सनातन माने सबसे पहले वाला और शाश्वत माने सदा रहने वाला जो कभी नष्ट ना हो, उस लोक में चला जाएगा, उसको प्राप्त होगा। उसके लिए क्या बताया है कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जिन यज्ञों का यानी धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन मैंने अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 31 तक किया है, ये साधना ऐसी है, कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई ऊपर को पैर करके नीचे को सिर कर लेता है, सिरासन पर साधना करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत ही रखता है, कोई अहिंसावादी ही बनकर साधना कर रहा है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई व्रत करता है, तो ये सभी साधक अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। लेकिन इस प्रकार के निर्णायक ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उस ज्ञान को तू चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक से संबंधित है, कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है, अर्थात वो तत्व ज्ञान, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको विनम्र भाव से प्रणाम कर, कपट छोड़कर प्रश्न करने से, विनम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत आपको उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, उस परमेश्वर के बारे में जानकारी देंगे। उसका संकेत करते हुए उस परमेश्वर के पाने की भक्ति, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति प्राप्ति कैसे होती है, उसका संकेत करते हुए 17वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविद समर्थ। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, उसकी प्राप्ति का, उसके सिमरण करने का केवल ओम तत् सत्य तीन मंत्र का जाप है। ओम तो ये स्पष्ट है ब्रह्म का है, तत् और सत ये दो सांकेतिक हैं, ये कोई नहीं बता सकता, ये दास बता सकता है, क्योंकि इस दास को परमात्मा ने वो गुप्त भेद बताया है, कबीर परमेश्वर जी ने, मेरे गुरुदेव जी ने। ऐसे ये तत् और सत गुप्त हैं और मंत्र हैं। ओम सीधा ही है, ओम ब्रह्म का जाप है, तत् ये परब्रह्म का जाप है, जिसको अक्षर पुरुष भी कहा गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में तीन परमात्माओं की जानकारी है, तीन प्रभुओं की, तीन पुरुषों की, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, वो श्रेष्ठ परमात्मा वास्तविक प्रभु तो इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से जो परमात्मा कहलाता है, कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, स अव्यय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर अपने सच्चिदानंद घन की वाणी में, कबीर वाणी में पहले ही बताया करते थे, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। ओहो, परमात्मा कहते हैं कि चारों युगों में मैं आया और आवाज लगा लगा कर, रुके मार मार के, ऊंची आवाज में गरज गरज के मैंने अपने इस यथार्थ ज्ञान को बताया, लेकिन काल के द्वारा भ्रमित ज्ञान के आधार पर ये भोली आत्माएं मुझे और मेरे ज्ञान को पहचान नहीं सकी। फिर जिन संतों को मैं मिला आकर के, जिन महापुरुषों को, महान आत्माओं को, वरेणियम पुरुषों को, श्रेष्ठ आत्माओं को मैंने अपने से परिचित करवाया, जिन महापुरुषों को मेरा साक्षात्कार हुआ, उन्होंने भी मेरी महिमा का आवाज लगाकर, रुक के मार मार के, ऊंची आवाज में हेला दे दे के कहा परमात्मा की वाणी में, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। तत्व ज्ञान मोक्ष रूपी हीरे और मोतियों की हम वर्षा कर रहे हैं, यथार्थ ज्ञान की, यथार्थ नाम भक्ति विधि की, और आवाज लगा लगा कर बोल रहे हैं, लेकिन ये भ्रमित आत्माएं डले ढो रहा है, डले इकट्ठे कर रहा है, कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है, ये जन्म और मृत्यु 84 लाख योनियों में भ्रमने की साधनाएं करके ये डले ढो रहा है, यानी कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, 16 शंख पर हमरा तकिया, गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए काट नियम का फंदा, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। ओह, सिंपल लैंग्वेज में कितनी प्यारी भाषा बोली है परमात्मा ने कि बंदी छोड़ हमारा नामम, हमारा नाम बंदी छोड़ है, किस लिए? अमर करूं सतलोक ले जाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं, अमर करूं यहां से तेरा जन्म मृत्यु का सदा के लिए झंझट मिटा दूं, सतलोक भेज दूं तुझे, इसलिए मैं बंदी छोड़ काल के बंधनों से, काल के कर्म रूपी रसों से, बंधनों से, सिकंजों से तेरे को छुटवा दूंगा। काल ने हमें कर्म प्रधान करके जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलने के आधार से हमें यही रोक रखा है। परमात्मा कहते हैं कि शुभ कर्मों के कारण तुम ब्रह्म लोक चले जाते हो, स्वर्ग लोक चले जाते हो, वहां पुण्यों को अक्षीण करके फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाते हो, और फिर पाप के आधार से नरक जाते हो, फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाते हो। अब परमात्मा कहते हम बंदी छोड़ हैं, कैसे हैं कि तुम्हारे पुण्य जो होंगे उनको सुरक्षित रखेंगे और तुम्हारे पापों को नाश कर देंगे। जब तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पुण्य बढ़ जाएंगे, तो हम इसका प्रतिफल इस काल के लोक में प्राप्त नहीं करेंगे, हम सतलोक में जाएंगे, इसका ऋण उतार देंगे। ये खुद भी कहता गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में के सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे व मोक्षामी मा सुच। गीता ज्ञान दाता काल कहता है कि मेरे 70 के ओम नाम का जाप और ये यज्ञ आदि जो तू करता है इन सब का फल मुझे छोड़ दे, इस ये सब पूजाएं मेरे में छोड़ दे, मैं तुझे ऋण मुक्त कर दूंगा, पाप मुक्त कर दूंगा, तुझे 84 लाख योनियों में नहीं डालूंगा, नरक में नहीं डालूंगा। एकम शरणम वरज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय परमात्मा सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर महेश्वर उस कबीर देव की शरण में जा। उसके लिए फिर बताया है किसी संत की तलाश कर। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं कि अजर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं और ताते बंदी छोड़ कहाऊं, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कहा है कि कबीर अंगारी असी और बम भारी अवेसुर असी। अंगारी माने पापों का शत्रु, अरी माने शत्रु, अग माने पाप, पापों का पाप नाश करने वाला कबीर असी, वो कबीर है, कबीर देव है, कबीर साहब है। और बम्बारी माने बंधनों का शत्रु, बम्बारी बंधनों का शत्रु यानी कर्म के बंधन को काटने वाला वो कबीर है। और रत धामा सवर ज्योति रत धामा असी, लास्ट में लिखा इस मंत्र के, वो सतलोक में रहने वाला है वो परमात्मा कबीर असी। सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित, उसका लोक और स्वयं प्रकाशित परमात्मा है वो रत धामा असी, यानी रत धाम माने सतलोक, सतलोक में रहता है, सतलोक वाला है, सतलोक सहित है। पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर जी की वाणी को हम महत्व नहीं दे पाए, क्योंकि हम अपने सदग्रंथों जिनको हम सदग्रंथ मानते थे, पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, श्यामवेद और अथर्ववेद, इनको हम बहुत ही प्रमाणित सदग्रंथ मानते थे, प्रत्येक हिंदू धर्म के प्राणी के मुख के ऊपर ये समाया हुआ है, वेदों जैसा ज्ञान नहीं। और दूसरे फिर श्रीमद् भगवत गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता जी चारों वेदों का सारांश है, जो भगवान ब्रह्म ने ही श्री कृष्ण में प्रवेश करके भूत की तरह प्रेत की तरह प्रवेश करके बोला है, और उसमें कुछ थोड़ी सी अपनी भी अटकल लगाई है, लेकिन वेदों का ज्ञान है ये परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म द्वारा दिया गया था। श्री ब्रह्म के अंदर ज्योति निरंजन के अंतःकरण में जैसे फैक्स कर दिया करे ऐसे कर दिया गया था, वो इसने जो का त्यों बोला है। फिर वेदों का ज्ञान इसने स्वयं बोला है गीता जी के रूप में, सारांश रूप में, और उसके बाद पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी पवित्र 18 पुराणों को भी सामान्तर आदर की दृष्टि से और देखते हैं तथा उनको भी ऑथेंटिक मानते हैं, वास्तविक ज्ञान युक्त मानते हैं। आज उन्हीं सदग्रंथों ने यह सिद्ध कर दिया कि वो परमात्मा कोई और है और वो कबीर है, वो अपने लोक से चलकर आता है। जैसे गरीबदास साहेब जी को मिले, गरीबदास साहेब जी को मिले गांव सुडानी में, जिला जज्जर में है, हरियाणा के अंदर। तो उन्होंने क्या बताया कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधारिया मोए सतगुरु मिले कबीर। परमात्मा गगन मंडल से उतरे, ओह यानी गगन मंडल से, आकाश से परमात्मा मेरे पास आए और मुझे यथार्थ ज्ञान दिया। अब ये तो वाणी है कबीर जी और उनके संबंधित जो परमात्मा को समझा, जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार किया और सतलोक यानी उस रत धाम को, उस सनातन परम धाम को जिन्होंने आंखों देखा, उन महापुरुषों की वाणी में भी ज्यों का त्यों वर्णन है। अब हमने ये देखना कि वो वर्णन यदि वेदों में भी हो तो फिर कहना ही क्या, फिर तो हमने स्वीकार करने में आनाकानी नहीं बनेगी और ना ही बननी चाहिए बुद्धिमान को। जो ज्ञान हम सच मानते हैं कि वेदों और गीता जी पुराणों में जो लिखा वो सच्चा है, और उस ज्ञान को आज हम स्वयं पढ़ सकते हैं, क्योंकि पहले तो हमारे पूर्वज अशिक्षित थे और संस्कृत भाषा के जानने पढ़ने बोलने का अधिकार केवल एक वर्ग को था जिसको ब्राह्मण बोलते थे, और वो ब्राह्मण वर्ग वेदों को और गीता जी को पुराणों को ठीक से समझ नहीं सका। हालांकि व्यास जी 18 पुराणों के राइटर हैं, श्री वेद व्यास जी, वो भी पुराणों के ज्ञान से पूर्ण परिचित नहीं थे, राइटर अवश्य थी। राइटर का क्या अर्थ होता है कि ये आध्यात्मिक शक्ति ऐसी होती है, जैसे काल भगवान ने गीता जी बोली थी रणस्थल पर और बाद में वेद व्यास जी में प्रवेश करके वो लिपिबद्ध कर दी 18 अध्याय बनाकर। इसी प्रकार व्यास जी में प्रवेश करके इस काल ने जो भी वार्ता जिस जिस ऋषि संत की हुई थी आपस में, वो सारी ज्यों की त्यों लिख दी और उसको 18 पुराण बना दिया। वैसे तो ये पुराणों का ज्ञान एक ही बोध माना जाता है, 18 पुराणों का ज्ञान एक ही बोध है और उसका मूल ज्ञान दाता श्री ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी से सुनकर ज्ञान, आगे ऋषियों ने आपस में कुछ अटकलें लगाई, एक दूसरे से प्रश्नोत्तरी की और फिर अपनी कुछ अपना अनुभव जोड़ दिया, उस ऋषि के नाम से फिर वो ज्ञान बढ़ता चला गया। जैसे विष्णु पुराण का ज्ञान श्री पाराशर जी ने बोला और कुछ अपना अनुभव कुछ ब्रह्मा जी से सुना हुआ, ऐसे ही इनके अलग अलग वक्ता हैं लेकिन राइटर एक ही है। तो कहने का भाव यह है कि अभी तक हम अपने वेदों गीता और पुराणों से परिचित नहीं थे और जिस कारण से हम परमेश्वर कबीर जी की उस अमृत वाणी को, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो तत्व ज्ञान विस्तार से कहा गया है। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो 32 में कहा है, तत्वदर्शी संतों से पूछ, गीता ज्ञान दाता कहता मैं उस ज्ञान से परिचित नहीं हूं। अपने आत्माओं, गीता जी अनुवाद करने वालों ने अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 में जो ब्रह्मणे मुखे शब्द है उसका अर्थ गलत किया है। उन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद और मुखे का अर्थ कर दिया वाणी, वेद की वाणी, जबकि इसका अर्थ होना चाहिए सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, क्योंकि यही अनुवादकर्ता गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर रहे हैं। तो यहां ये विचलित हो गए क्योंकि ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं हो सकता, जैसे ब्रह्म माने भगवान, परमात्मा प्रभु पुरुष, और वाणी और वेद जो होते हैं वो परमात्मा का विधान है। जैसे हमारे देश का संविधान है, हमारे देश का संविधान है, और उसका संविधान को लागू करने वाला, मेंटेन करने वाला राजा होता है। यदि राजा का अर्थ कोई संविधान करता है तो व्यक्ति विचलित है, उस लेख को समझ नहीं रहा जहां पर ऐसी कोई व्याख्या है। तो ब्रह्म तो समझो प्रभु है, ब्रह्म का अर्थ वेद करना न्याय संगत नहीं है, ये इनकी नासमझी है, अज्ञानता है। तो यहां इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ वेद लिख दिया, वेद नहीं होना चाहिए यहां पर। सचिदानंद घन ब्रह्म की मुख्य माने उनके मुख द्वारा मुखारविंद से उच्चरित वाणी, उसको मुख्य वाणी, सचिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उत्तरित वाणी में अर्थात कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उस ज्ञान को समझो, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो। अपने आत्मा यदि यही बात वेदों में मिल जाए कि वो परमात्मा अपने निज धाम से आता है, अमर धाम में रहता है, मुक्ति धाम में रहता है, और वहां से चलकर आता है और श्रेष्ठ भक्तों को मिलता है, श्रेष्ठ अच्छी आत्माओं को मिलता है, तो फिर हमें परमेश्वर के ज्ञान को समझने में देरी नहीं लगेगी। पुण्यात्माओं, इस काल भगवान ने इस अध्यात्म ज्ञान को इतना जटिल बनवा दिया, अज्ञानी संत महंत और ऋषि वेज के जो ना वेदों से परिचित थे, ना वो पुराणों से परिचित थे, ना गीता जी से परिचित थे, केवल दंत कथा लोक वेद सुनाकर हमें शास्त्र विपरीत ज्ञान से ओत प्रोत कर दिया। उस झूठे ज्ञान को सुनते सुनते हम इतने रंग गए, उस झूठे ज्ञान पर हमें पूर्ण दृढ़ विश्वास हो गया, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने एक ही प्रकार का ज्ञान दिया, एक ही जैसी बातें कही, तो प्रत्येक व्यक्ति सुनता सुनता सेट हो गया कि ऐसा ही है। अब हम अपने सदग्रंथों को स्वयं पढ़ने योग्य हो गए। एक बार तो हमें लगता है कि शायद ये रामपाल झूठ बोल रहा है, और जब ये दास आपको दिखाता है, देखिएगा आपकी गीता जी में, देखिएगा आपके पुराणों में, देखिएगा आपके वेदों में, देखिएगा आपके कुरान और बाइबल में, तो बुद्धिमान समाज को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम अपने सदग्रंथों से अपरिचित रहे। आप जी को वेदों में प्रमाण दिखाते हैं कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सचिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म जिसको बोला जाता है, वो अपने सतलोक में तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहां से चलकर यहां आता, उसका नाम कबीर है, वो कबीर वाणी द्वारा अपने ज्ञान को बोलता है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है, ईमेल भी है। इन लिखा ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती कृत। वैसे ये 9 और 10 मंडल दानंद द्वारा अनुवादित नहीं है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब यहां थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करना आवश्यक हो गया कि ये आर्य समाज के आचार्य ये झूठे भी निरे हैं। इन शर्म भी नहीं आती झूठ बोलते आना, तुम के बकवाद कर रहे हो, क्या लिख रहे हो। और ये दानंद सरस्वती की मोहर इसलिए लगाते थे कि ये इसके नाम पर वेदों के अनुवादित ये पुस्तक बिक जाया करती थी, जबकि ये अनुवाद दयानंद का नहीं। अगर दयानंद ने ये अनुवाद किया होता तो बट्ठा बैठा जाता है। किसी प्रकार भी समझ में नहीं आती, क्योंकि ये दास यदि आपको इनका अनुवाद करके दिखाए कि ये मेरा अनुवाद ऐसा है, महर्षि जी का ऐसा, तो आप नहीं मान सकते। आपके मन में एक धारणा बनी हुई थी कि बड़े विद्वान थे, बड़े पहुंचे हुए थे, बड़े समाधि लगाकर वेदों के अर्थ किया करते थे। ये टट्टू करा करता, इसने क्या है का भी नहीं बेरा था। इसके द्वारा अनुवाद किया हुआ दिखाता हूं एक सेंटेंस थोड़ा सा, जिसका सिर पैर भी नहीं है। ये तो इसे अनुवाद किया करता, ये देखना ये दुर्वेद। ये है दानंद सरस्वती द्वारा किया हुआ ये दुर्वेद। ये पूरा का पूरा इस दानंद जी ने ही अनुवाद किया है, महर्षि दानंद ने। महर्षि तो इसके लिए बोलना पड़ेगा, बाकी महर्षि नहीं था यो ना, तो पहचान नहीं सकोगे कि किसके बारे में जानकारी दी जा रही है। देखो प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद रामलीला मैदान नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाषा संपूर्ण 40 अध्याय यानी पूरा का पूरा महर्षि दानंद सरस्वती कृति, ये ठीक है। अनुवाद इसने किया है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौती हाउस दरियागंज नई दिल्ली। इतने ये फोन नंबर है। ये किसे अनुवाद किया करता है देखो, पांचवें अध्याय का और प्रथम मंत्र देखिएगा। इसमें है अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्ने तनुरसी और विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्ने माने परमेश्वर, तनु माने सहशरीर, असी माने है। विष्णवे माने धारण पोषण करने के लिए, तवा माने आप जी का यानी उस परमेश्वर, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। इसका सीधा अर्थ यह बनता है, लेकिन इस महापुरुष ने क्या किया है, इसका अर्थ है मनुष्यो तुम लोग जैसे मैं। अब मनुष्य और लोग दो गे, मनुष्य कह ले चाहे लोग कह ले, एक के बाद चाहे हे मनुष्यो तुम लोग जैसे मैं, जो हवि बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के शरीर के समान है। बता कोई बात हुई है। सीधा सार था अग्ने तनुरसी, अग्ने माने के लिखा बिजली प्रसिद्ध रूप और तनु माने शरीर असी माने है। ये तो बिल्कुल ठीक है, तनु माने शरीर असी माने है और अग्नि माने परमेश्वर। इन्होंने 100 जगह लिख रखा अग्नि माने परमेश्वर, लेकिन यहां अपनी उस सत्यार प्रकाश वाली और अनुभव की सोच को, उस अज्ञान को परखने के लिए यहां नहीं लिखा परमेश्वर। तो ऐसा अनुवाद था इसका, कहीं सिर पैर नहीं किसी सेंटेंस का इसके द्वारा किए गए अनुवाद का। ये अनुवाद किया है ऋग्वेद का अनुवाद, 1-6 मंडल तो महर्षि दानंद ने किया है, 7-10 तक ये एक और आचार्य ने किया है जो आर्य समाज से संबंधित है। ये देखिएगा ऋग्वेद भाषा भाष्यम, इसने ठीक लिखा है, भाषाकार हैं ऋग्वेद के, महर्षि दानंद सरस्वती मंडल 1-6 बस, और श्री पाद दामोदर 7 लेकर मंडल 7-10। ये पूरे आर्य समाजियों को मान्य है। ये कहां से छपा है, ऋग्वेद भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती दानंद संप्रण, ये आर्य समाजी का ही किया हुआ है, संपादक दानंद अर्पण और विश्व मानव उत्थान परिषद पंजीकृत 40/5 सामुदायिक केंद्र पूर्वी कैलाश नई दिल्ली से। 7-10, 7-8-9-10 ये ऋग्वेद के मंडलों का अनुवाद महर्षि दानंद का नहीं है, इसलिए इनमें कुछ सत्यता हमें इन्हीं के द्वारा अनुवाद में प्राप्त होगी। ये दास जो अनुवाद करेगा वो तो अनमोल होगा, क्योंकि किसी सदग्रंथों के अध्यात्म ज्ञान के अनुवाद में उसकी मौखिक जानकारी होनी आवश्यक है। सृष्टि रचना सबसे प्रथम है, और सृष्टि रचना का ज्ञान होने के बाद फिर ये अपने आप सभी सदग्रंथ अपने आप रास्ता दे देते हैं। और अन्य को किसी को सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, क्योंकि सृष्टि रचना परमेश्वर ने स्वयं ही आकर बताई है और उनकी द्वारा बताई गई सृष्टि रचना पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। अब होगा, क्योंकि हम स्वयं शिक्षित हैं, वेद सदग्रंथ हमारे पास हैं, हम पढ़ेंगे और समझेंगे और विश्वास करेंगे। अब देखिएगा, फिर वही आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9। ये दान सरस्वती द्वारा नहीं अनुवादित है, फिर भी ये प्रकाशक यही हैं आर्य समाज वाले और ये मान्य है इनको। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। फोन नंबर, फोन एंड फैक्स नंबर इतने इतने। और ये मुद्रक है प्रिंट्स ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 96 यानी 96, इसके मंत्र नंबर 16 में कहा है, प्रश्न किया है वेद ज्ञान दाता ब्रह्म ने कि हे पूर्ण परमात्मा, हे परमेश्वर, आप अपने यथार्थ नाम से, जो आपका गुप्त नाम है, श्रेष्ठ नाम है, उससे परिचित कराएं, आपका वास्तविक नाम क्या है। फिर 17वें में बताया है कि वो कबीर नाम है उस परमात्मा का, और वो जब आता है शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है तो अपनी महिमा की वाणी वो अपने मुखारविंद से, यानी कबीर नाम होता है वो कबीर वाणी में, कबीर वाणी में उस यथार्थ ज्ञान का उच्चारण करता है। और उस समय वो परमात्मा ऋषि या संत रूप में जो प्रकट होता है, उस ऋषि और संत रूप में प्रकट परमात्मा द्वारा बोली गई वो वाणी लकोक्तियों के माध्यम से, काव्यानों के, कविताओं के माध्यम से बोली जाती है, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। यहां से केवल इतना ही लेंगे, फिर आगे आज का सत्संग शुरू करेंगे। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 16। इसमें लिखा है कि गुह्यम चारु नामम, चारु नाम सब आयुध है, सतोत्र भी पूयमाने अभर्ष गुह्यम चारु नाम। अब सतोत्र भी माने सतोत्रों के, यानी ज्ञान के, तो ज्ञान के वाणी रूपी सब आयुध है, यानी अपने अस्त्र शस्त्र, अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र सहित आप आइए और परमात्मा अपने उस यथार्थ नाम का ज्ञान कराइए। इन्होंने लिखा अनुवाद, हे परमात्मन सरोपरी रहस्य चारु श्रेष्ठ नाम, माने नाम लिखना था यहां पर। इस नाम का अर्थ इन्होंने जो तुम्हारी संज्ञा है, नाम कर संज्ञा कर दिया, आप उसका ज्ञान कराएं। इसका अर्थ है परमात्मन आपका जो सबसे श्रेष्ठ नाम है, नाम है उसका ज्ञान कराएं। इसमें वो ज्ञान करा है, इसमें लिखा है कबीर, इसको ये कवि बोल देते हैं, हम इसको कबीर देव बोल देते हैं, कबीर देव, कबीर साहब, जैसा भी। शिशु जगानम हरियंतम मर्दंती सुभंती वहीना मरुत मरुतो गणेन कबीर गिरभी, कबीर गिरभी का अर्थ है कबीर वाणी। इन्होंने यहां देखिएगा, इस रै को हटा के, ऊपर वाले रै को हटा के, जो जो गी की, गै की, ई की मात्रा के ऊपर छोटा रह गया हुआ, इसको हटा के इन्होंने कवि के दो मात्रा ये अपसर्ग लगा दी और गिर भी अलग कर दी वाणी द्वारा। तो हम इसको जो का त्यों रखा, कबीर गिर भी, कबीर वाणी द्वारा, कबीर इन्हें कवि का अर्थ दिया कवि लोग, और वाणी द्वारा यहां हमने लिखना था वो कबीर वाणी द्वारा। परमात्मा जो आता है शिशु रूप धारण करके जानबूझ कर प्रकट होता है यथार्थ ज्ञान, वो अपने प्यारी आत्माओं को, बड़े बड़े समूह के समूह को यथार्थ ज्ञान बताता है, वो काविना यानी कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से अपनी कबीर वाणी द्वारा ज्ञान उच्चारण करता है वो कबीर संत सोम, वो परमात्मा जो कवि रूप में प्रकट होता है वो परमात्मा ही होता है। और अपने यथार्थ ज्ञान को रेभन, रेभन माने गर्जता हुआ, रेभन सन इन्हीं के द्वारा गर्जता हुआ यानी ऊंची स्वर में उच्चारण करता है, ज्ञान कराता है। अब देखो 18वें, इन अनुवाद फिर भी अच्छा नहीं किया, आगे देखो 9 के 96 में क्या लिखा है। अब 9 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर ये 18 है, इसमें लिखा है वो परमात्मा जो संत रूप में प्रकट होता है सोमम, वो अमर परमात्मा सोम स्वरूप या अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा तृतीयम धामम। अब संस्कृत पढ़ सकते हैं हम क्योंकि ये देवनागरी लिपि है, नागरी लिपि में लिपिबद्ध है। तृतीयम माने तीसरे, धाम माने श्लोक में स्थान पर विराजमान माने विराजमान है। तृतीयम धाम देवयान और पितरान ये इन्होंने अनुवाद किया है, दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है, तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान विराजम विराजमान है। इन्होंने कर दिया ज्ञान योगी, ज्ञान योगी की तट क्या भगवान की महिमा चल रही है प्रकाश। और कांतदर्शी दर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है, ये है वो परमात्मा कवि नाम पदवी, कवियों की प्रसिद्ध कवियों की पदवी को प्राप्त करता है क्योंकि वो अपनी साध अपनी वाणी को कविताओं से बोलता है लोकोक्तियों के माध्यम से। ऋषिकृत यहां लिखना था ऋषिकृत, उस ऋषि द्वारा की गई वो वाणी उनके अनुयायियों द्वारा के को बहुत अच्छी लगती है, स्वर के समान होती है। अब यहां इनने खूब अड़ंगाकरण की चेष्टा कर रखी है, इसमें से केवल इतना ही लेना है हमने कि वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। इसमें क्या किया है कि इसके 9-10 मंडल की भूमिका में लिखा है इन्होंने, 9 मंडल का आधे तो किसी ने अनुवाद किया है, आधा किसी ने किया है, तो जिसने आधा किया उसने अड़ंगा किया है, कुछ ने श्रेष्ठ ठीक ढंग से कर दिया, लेकिन ये मान्य है ये अनुवाद आर्य समाज के आचार्यों को, और यही ज्यादा बाधा करते हैं। संस्कृत का ठेका अभी न ले रखा, ब्राह्मणा ने छोड़ दिया, अब ये ठेकेदार हो रहे हैं संस्कृत हम नहीं आवे और सेनाती को न। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में आते हैं। अब यहां से हमने इतना लिया कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतलोक में रहता है, तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, मोक्ष स्थान पर रहता है जहां उसका मूल ठिकाना है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 पे आते हैं, ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 इसका मंत्र नंबर 26, इसमें कितना स्पष्ट किया है कि यज्ञ करने वाले यजमानों, यजमान कहो चाहे भक्त कहो, यज्ञ करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, नष्ट कर देता है, उनके संकटों को समाप्त करता है और उनको पवित्र करता हुआ भक्तों को, और अपने रूप को सरल करता हुआ यानी परमात्मा का वास्तविक रूप तो करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, तब भी एक रोमकूप की शोभा अधिक है, हम देख नहीं सकते इतने तेज को चरम दृष्टि से। परमात्मा अपने रूप को हल्का तेज पुंज का बना करके यहां प्रकट होते हैं, तब हमें वो ज्ञान देते हैं। क्या उद्देश्य रखते हैं देखिए, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमान परमात्मा कबीर, इन्होंने क्या कर दिया ये देखो, यो कबीर अत्यो का जो अर्थ है इन्होंने कवि कर दिया, हम यहां लिख दें वो कबीर देव है, कबीर देव विद्युत के समान यानी बहुत शीघ्र चलने वाले की तरह है, क्रीड़ा करता हुआ, जैसे बिजली चमकती है ना, आकाश की बिजली सैकंडों में जमीन पर आ जाती है, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, और वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है, श्रेष्ठ भक्तों को, श्रेष्ठ व्यक्तियों को मिलता है, जैसे गरीबदास जी को मिला, जैसे गरीबदास साहिब जी को छुड़ानी गांव में मिले, जिला झज्जर हरियाणा में, और जैसे मुलुकदास जी को मिले, जैसे दादू साहिब जी को मिले, जैसे घीसादास साहिब जी को खेखड़ा में मिले उत्तर प्रदेश में, और इस प्रकार नानक साहिब जी को बेई नदी पर मिले वो परमात्मा, सतलोक से चलकर, सचखंड से चलकर आकर के। तो ये वेद भी आज गवाही दे रहे हैं कि वो पूर्ण परमात्मा जो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वो शाश्वत स्थान में रहता है, वहां से गति करके बिजली की चमक, जैसे आकाशीय बिजली की स्पीड दें, इतनी स्पीड से नीचे आता है और अपने प्यारे भक्तों को मिलता है। वो आगे देखो, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 और मंत्र नंबर अब हम आपको 27 दिखाते हैं। प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूपों में स्थिति को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं। यह अर्थ वैसे वास्तव में कुछ और है, फिर भी हम अपने मतलब का लेते हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती है। जो परमात्मा धूलोक के और तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यहां ये देखना कि वो परमात्मा कहीं एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है, धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है। अब आगे देखो, देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और यहां देखिएगा मंत्र नंबर 1 में स्पष्ट किया है। जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों के हरने वाला, यानी पाप नाशक, पाप नष्ट करने वाला है, वह राजीव राजा के समान, राजीव राजा के समान दर्शनीय है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को, यानी श्रेष्ठ आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त हैं, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे होता है? जिस प्रकार विद्युत यानी बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होती है। अब देखो कितना स्पष्ट किया है कि जैसे पहले कहा करते भाई आकाश की बिजली काशी के बर्तन पर गिरा करे, धातु है काशी, पहले थाली बेले कटोरे गिलास ये काशी धातु के होते थे, अब तो ये स्टील के हो गए, तो उससे उसका कोई लिंक है, उसी के ऊपर बिजली गिरती थी। तो ऐसे बताते, ऐसे ही इसमें वेद में लिखा है कि वो परमात्मा जिस अपने भगत से उसका विशेष संपर्क है, जहां वो आ सकता है, जिसको मिलने योग्य है, जो उसी स्नेह वाले जैसे उस दृढ़ भगत को मिलता है, ता वो फिर उसकी महिमा आगे परमात्मा द्वारा बताए गए ज्ञान को आगे सुनाता है। ये स्पष्ट वेद कर रहे हैं, वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम तक चलकर आता है, अपने सतलोक से चलकर आता है, और वहां से फिर अपने श्रेष्ठ भक्तों को मिलता है। आगे देखो वो क्या किस उद्देश्य से आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का अब मंत्र नंबर 2 बताएगा किस लिए आता है परमात्मा। देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 2। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। हमने वो इतना ही लेना है उसको। अब आगे देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 इसमें और स्पष्ट किया है, वो कबीर देव है, वो परमात्मा कबीर देव। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 और इसका मंत्र नंबर 1 सरूम लिखा है, पर कबीर देव विते आयो। कबीर देव वो कबीर साहब, हम उसको कबीर साहब कहन लागे, कभी देव माने साहब, कबीर माने कबीर, हम कबीर साहब कहन लागे। अब बरस करके कबीर लिखन लागे, बड़ी की मात्रा लागे। इन्होंने क्या किया कि वह परमात्मा यहां लिखता मेधावी है, यहां लिखना था वो कबीर देव है, कबीर देव लिख देते बस, सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए, विद्वानों की तृप्ति के लिए यानी विद्वानों को ज्ञान देने के लिए ज्ञान देता है। ओह वह परमात्मा कबीर देव है जो तृप्ति के लिए यानी जो भक्त जो इच्छुक है ज्ञान का उसकी तृप्ति के लिए वो ज्ञान देता है और सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है, तिरस्कृत करता है। अपने आत्माओं इतना कुछ ये भूमिका बनी है आज के सत्संग की जो दास आपको सुनाना चाहता है। क्या सुनाना चाहता है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपनी वाणी में के बताया है, बहुत विस्तार से लिखा है, कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए वो भी बताई है। श्री श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं यानी अपनी मर्जी से कोई भी जाप साधना तप आदि करते हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण यानी पूजाएं करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है न उनकी गति होती है न कोई उनको कार्य सिद्ध होता है, अर्थात यूजलेस व्यर्थ।